ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय में कल वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर दूसरे दिन सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने शीर्ष न्यायालय को आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक इस अधिनियम के अंतर्गत वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ संपत्तियों सहित मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने केंद्र को वक्फ अधिनियम 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 7 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। इस दौरान बोहरा समुदाय के सदस्यों ने वक्फ संशोधन अधिनियम लाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह लंबे समय से उनकी मांग थी। प्रधानमंत्री ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लाने के पीछे वर्षों की मेहनत के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को लाने के पीछे का एक प्रमुख कारण यह था कि प्रचलित प्रणाली से अधिकतर महिलाएं, विशेष रूप से विधवाएं पीड़ित हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय पर सवाल किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि न्यायालय देश के राष्ट्रपति को निर्देश दे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय केवल संविधान की व्याख्या कर सकता है। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2008 के मुंबई हमलों के षड्यंत्रकर्ता तहव्वुर राणा के भारत में प्रत्यर्पण पर कहा कि अब पाकिस्तान को मुंबई हमलों के अन्य अपराधियों को सजा दिलाने की जरूरत पर बल देता है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान इन आरोपियों को लगातार बचाता रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर कोशिश के बावजूद वैश्विक आतंकवाद के केंद्र में बना हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हरियाणा में एक भूमि सौदे से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा से कल लगातार तीसरे दिन पूछताछ की। श्री वाड्रा से नई दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ की गई। यह मामला उनकी कंपनी द्वारा गुरुग्राम में एक भूमि की खरीद से जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामला भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मुद्दा है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया है। नई दिल्ली में कल पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस मामले में करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति केवल 50 लाख रुपए में अधिग्रहित की गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी अनिवार्य भाषा हिंदी होगी। वर्तमान में इन स्कूलों में कक्षा 1 से 4 तक केवल मराठी और अंग्रेजी अनिवार्य है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बुधवार को जारी एक सरकारी संकल्प जीआर में अगले शैक्षणिक वर्ष शुरू होने वाले नए भाषा पाठ्यक्रम के चरणबद्ध कार्यान्वयन की रूपरेखा दी गई। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कल जातीय जनगणना कहे जाने वाली सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कानून मंत्री एच के पाटिल ने कहा कि सदस्यों ने सर्वेक्षण और अन्य तकनीकी मुद्दों के बारे में अधिक जानकारी मांगी। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान समुदायों की संपत्ति और आय के स्रोत पर चर्चा की गई। 2 मई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में अगली रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम ने विल जैक्स के 36 रन की मदद से 18 ओवर एक गेंद में 6 विकेट खोकर 166 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।